Let's do the 60-second savings challenge. Step one, download Rocket Money. Step two, link your accounts and see every subscription you're paying for. Tap one you don't use and cancel it. That's money back every month. Step three, create a financial goal. $50 every paycheck, or let the app automatically move small amounts of cash when you can afford it. In a week, you'll forget you set it up. In a month, you'll see real dollars piling up. In a year, you'll be shocked at how much money you've saved. Bonus challenge, upload an internet or phone bill and let Rocket Money try to lower it. You only pay if they find you savings. On average, Rocket Money members can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. Make saving money the resolution you actually keep. Start the 60-second savings challenge at rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी को 2014 के चुनाव परिणामों के भी अपेक्षा बम्पर जीत मिलने वाली है। लेकिन हाल के दिनों में जो राजनीति के घटनाक्रम हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं और राज्यों में बनते बिगड़ते जो सियासी समीकरण है उसकी अगर माने तो बीजेपी को उन 7 राज्यों में सिरदर्द हो सकता है जिन 7 राज्यों के चुनाव परिणामों की बदौलत बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो 7 राज्य कौन से हैं जिसे जीतने के बाद कोई भी पार्टी आराम से केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। वो 7 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये वो 7 राज्य हैं जहाँ पर जो भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है जीत या यूं कहें तो सरकार उन्हीं की बनती है। एक बार हम आपको इन राज्यों के समीकरण और वहां पर लोकसभा सीट कितनी है वो हम आपको बता दें। हमारे पास जानकारी है कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 290 जो इन्हीं राज्य के पास है यानी कि 50% से ज़्यादा, और भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में जो 282 सीटें मिली थी उनमें से 197 सीटें इन्हीं 7 राज्यों से हासिल हुई थी। और आपको बता दें यही नहीं, भाजपा की जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी पार्टियां जो भाजपा के साथ अलग अलग राज्यों में गठबंधन में है, उन्हें जो 44 सीटें मिली थी वो इन्हीं 7 राज्यों से मिली थी। तो ये 7 राज्य चुनाव की दृष्टि से, खासतौर पर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कितने मायने रखती है बीजेपी के लिए वह काफ़ी अहम बात है। लेकिन अब इन्हीं 7 राज्यों में बीजेपी को झटका लगने वाला है, उन्हें सिरदर्द पैदा हो सकता है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कन्होजिया हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार मौजूदा समय में ये 7 राज्य में बीजेपी की क्या स्थिति है और किस तरह के सियासी समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोनू जी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं और उसके बाद वहाँ के हालात अचानक से बदल गए हैं, क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो क्या लगता है 2019 और उत्तर प्रदेश किस तरह से देखते हैं बीजेपी के लिए?
देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा की वहीं पर हैं और एक बहुत बड़ा राज्य है। विधानसभा चुनाव जो इसके पहले हुए थे उसमें बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने पाई है, बहुत बड़ा जनाधार मिला उन्हें, मैजिक फिगर से भी ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन एक साल बाद, महज एग्जैक्ट एक साल बाद, आज 19 तारीख है और सरकार भी उनकी बनी थी, तो एक साल बाद अब स्थिति बदल चुकी है। अब यहाँ पर देखें तो राजनीतिक समीकरण है विपक्ष का, वो बदल चुका है। मायावती और अखिलेश यादव ये दोनों एक साथ आ चुके हैं। इन दोनों का साथ आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन चुका है। देखिए, दो यहाँ पर देखा जाए तो दो जो समुदाय हैं, एक मुस्लिम समुदाय और दूसरा पिछड़ा समुदाय, ये दो समुदाय, ये इनका जनाधार इस वक्त और इनका झुकाव इस वक्त एसपी और बीएसपी के पास
है। दोनों का गठबंधन भी हुआ है।
हाँ, दोनों का गठबंधन भी हुआ है, जो हमने उपचुनाव में इसका नतीजा देख लिया। तो इसका मतलब साफ ये है कि
गठबंधन यानी कि एक समझौता किस्म का हुआ है कि हम उपचुनाव में साथ रहेंगे।
हाँ, उपचुनाव तो है ही, लेकिन इसके आगे 2019 के चुनाव भी तो है, तो अब ये जो जोड़ी है साथ में रहेगी, क्योंकि अगर दुश्मन बड़ा, दुश्मन हमसे बड़ा है तो साथ में हो जाओ और साथ मिलके हराया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश में हमें देखने मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अच्छी खासी जीत हासिल हुई थी, अच्छी खासी सीट्स के साथ वो जीते थे, आने वाले 2019 में उन्हें टफ फाइट तो मिलेगी, क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, ये समाजवादी पार्टी और एसपी, इनकी सरकारें रह चुकी है यहाँ पर। तो इन दोनों पार्टी के एक साथ आ जाने से लोकसभा की जो सीट्स हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीट बीजेपी ने जीती थी 2014 के लोकसभा के चुनाव में। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी जो खबर थी वो गुजरात से भी आई थी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 26 लोकसभा सीट, यानी कि पूरी की पूरी लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब गुजरात के क्या हालात हैं सोनू जी?
देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो हाल ही में चुनाव हुआ है, हाल ही में जो चुनाव हुआ उसका बहुत ज़्यादा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, पिछले लगभग 20 साल से, यानी कि 2 दशकों से मोदी की सत्ता थी, मोदी ने सिंगल हैंडेडली इस पूरे गुजरात को अपने पास रखा। हालांकि गोधरा कांड और ये सब चीज़ों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन अब जो हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। ये 16 सीट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने मिली, गुजरात में पहली बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ हमें यहाँ पर देखने मिली, यानी कि सरकार बनने के महज कुछ सालों बाद, मोदी सरकार बनने के 3-4 साल में एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर आ गई है। और साथ ही साथ हार्दिक पटेल का फैक्टर, जिग्नेश मेवानी का फैक्टर, अल्पेश ठाकुर का फैक्टर,
इनका फैक्टर लोकसभा में भी रहेगा।
देखिए, अब जो है दायरा बढ़ते जा रहा है इनका भी, जिस तरह से आज भी जिग्नेश मेवानी एक दलित नेता के रूप में आगे आ रहे हैं, तो उनका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जिग्नेश मेवानी का जहां पर भी, जो भी, चाहे एनडीए हो या यूपीए, जिसकी ओर ज़्यादा झुकाव होगा, ये जो पिछड़ा जो वर्ग है वो उनके साथ चला जाएगा। अगर बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी का फायदा होगा, अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो बीजेपी का नुकसान होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रीजनल नेता हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन लोगों को अगर जिसने साथ में रखा गुजरात में, उस पार्टी का यहाँ पर फायदा होगा।
यानी कि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक तीनों ही अब अपना अपना वोट बैंक और जनाधार मजबूत कर रहे हैं।
जी हाँ, देखिए, अल्पेश ठाकुर को मैं इतना ये नहीं देखूंगा समझूंगा, लेकिन जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल एक पाटीदार समुदाय का है और एक पिछड़ा समुदाय, जो दलित समुदाय जिसे कहा जाता है, ये दोनों एक बड़े वर्ग है और इन दोनों बड़े वर्गों को ये दोनों नेता अपने पास रख रहे हैं, और अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सा टच आ चुका है। तो इसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जो नेता हैं ये अपने पास रखेंगे और इसका फायदा ज़रूर होगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पाटीदार को, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, इन सबको अपने साथ रखा, क्या 2019 में अपने साथ रख पाएगी? अगर रख पाती है तो गुजरात की जो सीट्स हैं, जहां पर हर लोकसभा सीट्स पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व लहराया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर हो। लेकिन बीजेपी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो किस तरह से अपनी सीट्स रखना चाहेगी और ख़ासतौर के गुजरात में, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और वो बीजेपी है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, ये मुझे लगता है गुजरात को अपने हाथ से जाने देंगे।
चलिए, गुजरात के बाद अगला नंबर बिहार का है। बिहार में अगर आपको बता दें तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो किसी ज़माने में साथ चलने की बात करते थे। इसके अलावा जो अररिया, जो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पर भी आरजेडी की वहाँ पर जीत हुई, तो वो बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। रामविलास पासवान बीजेपी को कह रहे हैं कि भैया मंथन कीजिए, क्योंकि अररिया सीट पर अगर हम देखें तो बीजेपी के प्रत्याशी का हार जाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बिहार में जो बदलाव की अगर जो बात हो रही थी, जो बीजेपी के साथ लड़ाई लेते समय जो फिर से एक बार हो बिहार में बाहर हो, जो एक नारे लगे थे, जो गाना किया था, तो रामविलास पासवान इसीलिए चिंता में है कि कहीं बिहार में लोकसभा में कहीं बदलाव ना हो जाए। तो बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, बिहार की राजनीति में अगर इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है तो वो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त जेल में है, आज भी उन्हें चारा घोटाले के चौथे मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव का संपर्क उनके पार्टी से हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि आए दिनों अगर मुलाकात होती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तो बनाते ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से कि आरजेडी बहुत ही अच्छा विकल्प बिहार के लोगों के सामने उभर कर आएगी, क्योंकि हमने जो पिछले कुछ दिनों में हलचल देखी है बिहार में, नीतीश कुमार और लालू ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार लालू को छोड़ दिया। लालू को छोड़ने के बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा सा, एक नाराजगी सा
इसके प्रति,
नीतीश कुमार के प्रति आ चुकी है, क्योंकि उनका ये, लोगों का ये मानना है वहाँ पर कि हमने आपको और लालू प्रसाद यादव दोनों की पार्टियों को जिता के दिया, और लालू प्रसाद यादव को ज़्यादा सीट्स मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी उभर के बन के आई थी। तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनने का मौका दिया। तो ये जो दरिया दिली है लालू प्रसाद यादव की, वो आम जनता के, जो बिहार की जो जनता है उनके नज़र में गई है, और उसके बाद ये जो गठबंधन तोड़ा गया, तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाराज़गी है, एक गुस्सा वहाँ पर बन रहा है, तो उसका फ़ायदा आरजेडी ज़रूर उठाएगी। और आरजेडी के अलावा जतिन राम मांझी और भी जो सहयोगी दल हैं, उनका थोड़ा थोड़ी जो नाराज़गी बढ़ती जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा तो कर सकती है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त जो चुनाव है उसको पूरी तरह से चेंज करने का दमखम नरेंद्र मोदी रखता है।
चलिए, तो बिहार में आपको बता दें कि 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 22 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी, और जो 9 सीटें हैं वो उनके सहयोगी दलों को मिला था। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम करिश्माई बदलाव कर सकते हैं, यही कुछ बदलाव महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में लोकसभा के जब परिणाम आए तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी विपक्ष के लिए काफ़ी धक्कादायक फैसले निकल कर सामने आए थे। तो महाराष्ट्र में स्थिति भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि लोकसभा के दृष्टि से बीजेपी का छोटा भाई तो दूर हो गया।
देखिए, बीजेपी का छोटा भाई जिसे कह रहे हैं वो एक वक्त बीजेपी का बड़ा भाई बना करता था जब बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन आज उस बड़े भाई की जो अहमियत है, कीमत है बीजेपी के नज़र में, वो छोटे भाई की तरह हो चुकी है। लेकिन छोटे भाई ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2019 में वो अलग हो जाएगी। हालांकि अलग होगी नहीं होगी इस पर बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है शिवसेना की, वो पिछले काफ़ी वक्त से, जब से 2014 के बाद से चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद बीएमसी के चुनाव हुए, वो स्टैंड कभी क्लियर नहीं हो पाए कि वो विपक्ष में है या सत्ता में है। अब उन्होंने कह दिया कि हम 2019 के पहले अलग हो जाएंगे। अलग होंगे भी कि नहीं होंगे पता नहीं, या फिर कुछ और चल रहा है वो भी मुझे पता नहीं।
एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या सच में शिवसेना के अलग जाने से बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ेगा?
देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से शिवसेना को ख़त्म करने का प्लान बनाया हुआ है। चाहे वो आप हमारे साथ रहो या आप अलग रहो, हम आपको ख़त्म करेंगे, ऐसा प्लान मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बनाया हुआ है। क्योंकि अगर देखें हम 2014 के बाद से देखें तो बीजेपी लगातार हमले करती रही है। बीजेपी का रवैया ही वो हुआ कि आप अब राज्य में छोटे हो चुके हैं और आप छोटे भाई की तरह रहो, ये उनका कहना है। छोटे से छोटा लीडर आज बीजेपी का अगर देखा जाए, उद्धव ठाकरे के कद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो उद्धव ठाकरे के बारे में बयानबाजी दे देता है। इसका मतलब साफ ये है कि बीजेपी छोटे छोटे नेताओं के जरिए शिवसेना पर हमला करना चाहती है, और एक तरह का ह्यूमिलेशन,
अटैकिंग पॉलिसी,
अटैकिंग पॉलिसी तो है, साथ में एक तरह का ह्यूमिलेशन भी जो है करना चाहती है उसका। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना और बीजेपी का क्या गठबंधन होगा, क्या रोल होगा, वो मुझे इस वक्त साफ नज़र नहीं आ रहा है। भले ही उन्होंने दो अलग होने की बात कही है, लेकिन हाँ देखिए टक्कर तो मिलेगी। टक्कर इस वक्त अगर कोई दे पाएगा तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र में, जो जिसके मुखिया शरद पवार है। देखिए शरद पवार काफ़ी अगर महाराष्ट्र की राजनीति में या फिर देश की राजनीति की अगर बात करें तो सबसे सीनियर लीडर है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि
नरेंद्र मोदी के गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु
जी, और हर चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए अब जो 2019 के जो चुनाव होंगे ये महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो शरद पवार के पास जाएंगी, और शरद पवार जिस तरह से डायरेक्शन देंगे उस तरह से ये चुनाव होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई टक्कर देगी महाराष्ट्र में तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस उसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकती है, लेकिन महाराष्ट्र से कुछ सीट हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से निकल जाए।
चलिए तो सीटों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 23 सीट और इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को 18 सीट मिली थी, 23 सीट बीजेपी को मिली थी। तो हालात महाराष्ट्र में बदलते नज़र आते हैं। शिवसेना भले साथ में छोड़े ना छोड़े, लेकिन टीडीपी ने साथ छोड़ दिया। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद कलाम मच गया, दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव की बात लगातार की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में क्या हालात हैं?
देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में इस वक्त टीडीपी तो नाराज़ है ही। टीडीपी ने कहा कि आपने हमें वादा किया था कि आप हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही वाईएसआर कांग्रेस ने ये कह दिया कि अब हम, उन्होंने नोटिस भी दे दिया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के सामने दो दिक्कत है, एक तो विपक्ष, दूसरा उनका सहयोगी जो अभी अभी अलग हुआ है। तो ये दो चीज़ें अगर एक बार फिर से साथ में आती है तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए चंद्रबाबू नायडू आज भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाले और ताकतवर नेता है। उनके बाद अगर जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस का भी अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव रहा है। तो अगर वहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ बीजेपी से अलग होती है और ये कह के कि आपने हमको स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो लोकप्रियता जो है वो लोगों की जो लोकप्रियता है वो इन दोनों दलों के पास जाएगी। तो हो सकता है कि इसका असर देखने मिले।
चलिए तो आपको बता दें कि 42 लोकसभा सीटों में से 2014 के ये परिणाम हमको बता रहे हैं, हमारे पास सूची है। 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिली थी, 3, और टीडीपी को 16 सीट मिली थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंख तो टीडीपी ही दिखाएगी बीजेपी को। खैर बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर 2014 के जो लोकसभा के नतीजे आए थे उसमें से आपको बता दें कि भाजपा ने 29 में से 27 सीटें जीती थी। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश बीजेपी का घट रहा है, लेकिन अब वहाँ पर उपचुनाव लगातार हो रहे हैं और हार का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को।
देखिए ये बहुत बड़ी बात है, उपचुनाव में जिस तरह से हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, इसका कहीं ना कहीं एक देखिए साइकोलॉजिकल असर तो हमें देखने मिलेगा ही। क्योंकि जब आपको हार मिलती है तो एक नाराज़गी, एक मायूसी आपकी पार्टी में जाती है, और ख़ास तौर के देखा जाए तो यहाँ पर कई जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर भारी मात्रा में हार मिली है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है शिवराज सिंह चौहान के लिए, व्यापम घोटाला हो जाए, ऐसे सरकारी नौकरियों को लेकर हो जाए, डॉक्टर्स को लेकर हो जाए, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने
में। हाल ही में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ।
जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी वक्त से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान एक वक्त नरेंद्र मोदी के बराबर के नेता माने जाते थे, और जब 2014 के पहले इनकी भी नामों की अटकलें लगाई जाती थी कि ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ साल से कई ऐसे स्कैम है जिसको लेकर और बयानों को लेकर मामा जी के ऊपर जो है कई सवाल उठने लगे और लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी भी जरूर आई है।
चलिए, तो 25 लोकसभा सीटें है राजस्थान में। राजस्थान में 2014 के जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेसियों को लगा कि वे 25 में से अच्छी खासी मात्रा में वे जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में से 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीत ली और वहाँ पर भी वही हालात है जो मध्य प्रदेश में है। उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। जब पद्मावती जी से फिल्म रिलीज़ होती है तो वहाँ पर बीजेपी के प्रति गुस्सा निकल कर आता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और मैं तो खबर पढ़ रहा था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और उल्टी सीधी बात कर रहे थे।
देखिए, पिछला एक साल अगर बात करें, एक से डेढ़ साल, राजस्थान में बहुत सारी हलचलें हुई। एक गैग ऑर्डर लाया गया था वसुंधरा राजे की तरफ से मीडिया पर, मीडिया के ऊपर, वो एक नाराज़गी थी, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोगों के बोलने की आज़ादी को लेकर सवाल उठे थे। उसके बाद पद्मावती का रोल तो सबको पता है। पद्मावती में जिस तरह से एक करनी सेना और करनी समुदाय के लोग, राजपूत समुदाय के लोग, ये रस्ते पर उतर गए और कई सारा हंगामा किया, तो उसका भी असर, उसको भी लेकर उस वक्त बीजेपी ने कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो उसका भी असर राजस्थान में हमें देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं, रोड्स की समस्या ले लो या फिर एजुकेशन सिस्टम की समस्या ले लो, हेल्थ की समस्या ले लो, मेडिकल की समस्या ले लो, ऐसी कई समस्या हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने नहीं मिला है, खासतौर पर महिलाओं की पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर। आज भी वहाँ पर कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें, फैक्टर्स हैं जो बीजेपी सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पर वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे के जो नेतृत्व है उसको लेकर कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के ही नेता है वो नाराज़ दिख रहे हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि बीजेपी को असर दिला दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में बीजेपी को कुछ नुकसान होगा।
चलिए, तो नुकसान की अगर हम बात की जाए तो बीजेपी को लगता है कि 2019 में कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा विपक्षी पार्टियों का। विपक्षी पार्टियां नुकसान कसने करने के लिए पूरी तरह से कमर कसती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सस्पेंस बहुत है, ड्रामा बहुत है और राजनीतिक उठापटक बहुत है। और इन बहुत सारी जानकारियों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए HW न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.